हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष भक्त उपस्थित हैं और हम पूजनीय भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज। हरि हरि बोल। महाराज जी का संक्षिप्त परिचय। महाराज जी का जो प्राकट्य उड़ीसा में जगन्नाथपुरी क्षेत्र के समीप ही हुआ और भौतिक दृष्टि से महाराज ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज में महाराज लेक्चरर का जॉब कर रहे थे। 1980 में महाराज ने अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर वृंदावन में फुल टाइम डिवोटी ज्वाइन किया और वहाँ पे महाराज यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश में 1981 से 84 तक महाराज ने काफ़ी ट्रेवल किया, प्रचार किया, लाइफ मेंबरशिप बनाए, पंडाल प्रोग्राम्स इत्यादि किए और फिर 1984 में महाराज कोलकाता गए और 1984 से 1989 तक महाराज कोलकाता में रहे, वाइस प्रेसिडेंट थे और वहाँ महाराज ने यूथ प्रीचिंग शुरू किया। यूथ प्रीचिंग का जो बीज रखा गया कोलकाता में 1984-89 के बीच में, उसके बीच में 1987 में महाराज कोलकाता से उड़ीसा में भी ट्रेवल करते थे और वहाँ पे भी उन्होंने यूथ प्रीचिंग शुरू किया तालचेर, थर्मल और अंगुल क्षेत्र में। और 1990 में महाराज को इस्कॉन भुवनेश्वर में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे भी इस्कॉन भुवनेश्वर में महाराज ने पहला यूथ प्रीचिंग प्रोग्राम शुरू किया और पहली जो रथ यात्रा भुवनेश्वर की रथ यात्रा महाराज ने ऑर्गेनाइज की और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला जो प्रभुपाद की बुक है उसको महाराज ने उड़िया में ट्रांसलेट किया और जो नया मंदिर बना वहाँ पे उन्होंने डीटी इंस्टॉलेशन महाराज की संरक्षण में हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं महाराज ने भुवनेश्वर में प्रारंभ की। फिर महाराज को 1992 में जुहू में शिफ्ट किया गया और वहाँ महाराज ने लाइफ पैटर्न डायरेक्टर के रूप में सेवा की 1993 तक। फिर महाराज को वापस ब्रज क्षेत्र में भेजा गया 1994 में। इस्कॉन गोवर्धन के प्रेसिडेंट बने महाराज और वहाँ ने सेवाएं की महाराज ने 2004 तक। 2003 में महाराज ने संन्यास दीक्षा ग्रहण की और 2007 में महाराज ने अब दीक्षा गुरु के रूप में अपॉइंटेड है इस्कॉन में। महाराज पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और बहुत विख्यात हैं अपने सुंदर प्रवचनों के लिए, अपने सरल और मधुर व्यवहार के लिए। 2009 से महाराज जोनल सेक्रेटरी हैं उड़ीसा के सेंटर और साउथ और साथ ही साथ महाराज के इतना आप देखिए वर्सिटाइल सेवाएँ महाराज की। इतने भ्रमण होते हुए महाराज चैतन्य चैतन्यमृत को महाराज ने एडिट किया हिंदी में और आप जैसे जो पुराने भक्त देखे होंगे जो पहला जो चैतन्य चैतन्यमृत का जो एडिशन था हिंदी में उसमें बहुत सी कमियां थी, गलतियां थी, वो सारा एडिट हो गया। जो नया एडिशन आया है महाराज जी का योगदान उसमें बहुत महत्वपूर्ण। और उड़ीसा में एक अंगुल क्षेत्र है वहाँ पर महाराज ने विशेष रूप से सन 2010 से वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं और एक बहुत सुंदर वहाँ पे प्रोजेक्ट निखर के आ रहा है, एक सुंदर मंदिर भी बन रहा है महाराज के निर्देशन में। तो महाराज बहुत ही व्यस्त रहते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, हमारे लिए समय निकाला आज की बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में। बलदेव विद्याभूषण जी का तिरुभाव दिवस है और कल पांडव निचला एकादशी है तो महाराज हमें यहाँ भी संग देंगे और रोहिणी मंदिर में भी संग देंगे। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और महाराज जी का हम स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद।
आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। यद्यपि भौतिक दृष्टि से किसी का वियोग शुभ दिन नहीं माना जाता किंतु वैष्णव आचार्यों का तिरोधान इसलिए शुभ है कि ये भगवान कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, नित्य आनंद धाम में प्रवेश करते हैं, इसलिए ये आनंद की बात है। और दुख इस बात का है कि हमें ऐसे महान वैष्णवों का संग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हम ऐसे वैष्णवों के संग लाभ से वंचित हैं, इसलिए ये दुख का दिन भी हो सकता है इस दृष्टि से। इसलिए वैष्णव का भी एक सुख और दुख का एक अपूर्व संयोग है। फिर भी हम लोग ऐसे महान वैष्णवों के गुणगान करते हुए हम अपने को शुद्ध करेंगे और उनके गुणगान श्रवण करते हुए भी हम शुद्ध होंगे और इस प्रकार हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति करना संभव पर नहीं होता। इसलिए वैष्णवों का संग आवश्यक है, वैष्णवों की सेवा आवश्यक है, वैष्णवों के मुख से भगवान की कथा श्रवण करना आवश्यक है, जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है, हम विनम्रता को प्राप्त होकर वैष्णवों की सेवा करते हुए भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और इस प्रकार अपने दुर्लभ मानव जन्म को सार्थक कर सकते हैं। तो आज हमारी परंपरा में दो महान आचार्यों की तिरुभाव तिथि है। एक तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, उनकी तिरुभाव तिथि है, और श्री गंगा माता गोस्वामी की भी तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव बलदेव विद्याभूषण के और गंगा माता गोस्वामी के आविर्भाव तिथि है। तो इस अवसर पर हम पहले गंगा माता गोस्वामी के संबंध में चर्चा करेंगे। गंगा माता गोस्वामी ने एक राजकुमारी थी। आजकल जो बांग्लादेश है, इनका आविर्भाव बांग्लादेश में हुआ था और ये महाराज नरेश नारायण की पुत्री थी, एकमात्र पुत्री, और इनका वास्तविक नाम था सची देवी। पहले इनका नाम गंगा माता नहीं था। तो ये सची देवी बहुत सुंदर थी, राजकुमारी थी, राज ऐश्वर्य में पालन पोषण हुआ था और बाल्यावस्था से वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण बहुत अधिक था बाल्यावस्था से, इसलिए सांसारिक कार्यों में या सांसारिक भोग में उनका कोई मन नहीं था। जय तब महाराज नरेश नारायण बहुत चिंतित रहते थे कि किस प्रकार अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह एक उपयुक्त पात्र से करें। जब उनके विवाह का समय आया तो उस समय सची देवी ने अपने पिता माता से कहा कि मैं किसी मर्त पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, अर्थात किसी साधारण मर्त पुरुष अर्थात जो जन्म मृत्यु के अधीन है, संसार का व्यक्ति है, उससे मैं विवाह नहीं कर सकती। तो राजा रानी इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो गए कि एकमात्र पुत्री है और इतनी सुंदर कन्या है किंतु वो विवाह करना नहीं चाहते। तो इस चिंता में कुछ दिन के पश्चात राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई और जब उनकी मृत्यु हुई, राज कार्य चलाने के लिए उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए राज कार्य चलाने का भार इस सती देवी के ऊपर आकर पड़ा। तो उन्होंने कुछ समय के लिए राज कार्य का संपादन किया, किंतु राज कार्य में उनका मन नहीं लगा। वो परिस्थितिवश बाध्य होकर ऐसा कर रही थी। तो बाद में उन्होंने निश्चय किया कि इस राज कार्य का तो दायित्व है, वो अपने सगे संबंधी मंत्रीगण उनके ऊपर न्यस्त करके वो गृह त्याग करेगा और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को उत्सर्गीकृत करेगी। तो यह सोचकर उन्होंने राज्य का दायित्व अपने आत्मीय स्वजन और पात्र मंत्रियों को प्रदान किया और उन्होंने गृह त्याग दिया। तो हम कल्पना कर सकते हैं उस समय एक राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी गृह त्याग करके वो वृंदावन आ रहे, भगवान कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को उत्सर्गित करने के लिए। कितना बड़ा पदक्षेप है और भगवान कृष्ण पर कितना विश्वास है। अन्यथा कोई एक युवती स्त्री इस प्रकार जो राजकुमारी है, राजकन्या है, और गृह त्याग करके अकेली वृंदावन नहीं आ सकती। उस समय रास्ते में घन जंगल, वृंदावन उस समय भी घन जंगल से पूर्ण था और मार्ग में डाकुओं का भय रहता था। जब सनातन गोस्वामी आए तो उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा था वृंदावन आने के लिए, किंतु सची देवी ने इसके लिए कोई खातिर नहीं की। भगवान कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास के कारण उसने गृह त्याग दिया और सीधे वृंदावन चली गई। तो उस समय वृंदावन में एक साधु रहते थे वैष्णव, जिनका नाम था हरिदास पंडित। तो ये हरिदास पंडित अनंत आचार्य के शिष्य थे और अनंत आचार्य गदाधर पंडित के शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और श्रीमती राधारणी के अवतार गदाधर पंडित, जो जगन्नाथपुरी में निवास करते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो उनके शिष्य थे अनंत आचार्य और अनंत आचार्य के शिष्य थे हरिदास पंडित। तो सच्ची देवी आकर हरिदास पंडित से मिले और उनके आश्रय में रहने के लिए उन्होंने निवेदन किया। तो हरिदास पंडित जो उस समय महान वैष्णव थे, तो उन्होंने सची देवी की परीक्षा ली। गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं, शिष्य बनाने से पहले परीक्षा लेते हैं, ये शिष्य होने योग्य है या नहीं। जिस प्रकार शिष्य गुरु की भी परीक्षा लेता है, देखता है कि ये प्रामाणिक गुरु है या नहीं, इसलिए गुरु की सेवा करके उनका संग करके शिष्य ये निश्चित हो जाना चाहता है कि ये गुरु प्रामाणिक है। उसी प्रकार गुरु भी निश्चित हो जाना चाहते हैं ये शिष्य भी प्रामाणिक शिष्य, ये केवल भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उनके चरणों में अपने को समर्पित करने के लिए आया है या नहीं, या कुछ शिष्य का अलग उद्देश्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कृष्ण चेतना में, सभी भक्ति के लिए नहीं आते हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य भी होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब तक हमारा उद्देश्य निश्चित नहीं है तो हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हरिदास पंडित ने ये नहीं सोचा कि एक युवती कन्या है, बहुत दूर से आई है, इसकी परीक्षा लेंगे तो अगर परीक्षा में फेल हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने उनकी परीक्षा ली, वो जानना चाहते कि ये भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितने निष्ठावान है। तो उन्होंने कहा कि राज ऐश्वर्य त्याग करके वृंदावन में रहकर कृष्ण का भजन करना है, ये इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। हरिदास पंडित ने कहा सचिव से, क्योंकि वो जानते थे कि ये राजकन्या है, इसलिए राज ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति होनी स्वाभाविक है, भोग के प्रति आसक्ति होनी स्वाभाविक है, और भक्ति का जीवन जो है ये त्याग का जीवन है, तपस्या का जीवन है, और कृष्ण पर पूर्ण निर्भरशीलता का जीवन है। यहाँ पर भोग या भौतिक आसक्ति के द्वारा कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हरिदास पंडित ने कहा कि, क्योंकि वो जानते थे कि इनका ये राज परिवार से आई है, तो राज ऐश्वर्य के प्रति भोग के प्रति आसक्त होना स्वाभाविक है, राज कन्या या राजपुत्रों के लिए, राज परिवार के सदस्यों के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि ये राज कन्याओं के लिए ये भक्ति का मार्ग उचित नहीं है, ये उस प्रकार त्याग तपस्या नहीं कर सकते। तो सचिदेवी समझ गई कि ये क्यों कह रहे हैं इस प्रकार, तो ऐसे तो राज ऐश्वर्य के प्रति स्वयं आसक्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो राज वस्त्र राज परिवार के जो दामी वस्त्र पहनते हैं तो वो पहनी हुई थी, उसको त्याग दिया। सचिदेवी ने उसको त्याग दिया और जो अलंकार पहनी हुई थी राजकन्या होने के नाते उसको भी त्याग दिया। जब हरिदास पंडित ने देखा कि नहीं, सचमुच इनमें निष्ठा है कि उन्होंने राज परिवार में जो मूल्यवान वस्त्र पहने जाते हैं उसको त्याग दिया है, अलंकार आदि त्याग दिया है, तो उन्होंने और एक परीक्षा ली। ये तो पहली परीक्षा थी। दूसरी परीक्षा उन्होंने कहा कि आप यदि लज्जा त्याग करके, आत्मसम्मान को त्याग करके और भय को त्याग करके आप माधुकरी कर सकती है, तब आप हमारी कृपा प्राप्त कर सकती है, अन्यथा नहीं। यह नहीं है कि कोई आया गुरु के पास और बोल दिया कि हम आपका आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, आपका शिष्य बनना चाहते हैं, और गुरु ने बोल दिया हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, ये राज परिवार से आया है, अच्छा है। ऐसा उनकी दीक्षा इस प्रकार नहीं, कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनकी दीक्षा हुई सचिदेव। तो उनके गुरु ने कहा, हरिदास पंडित ने, कि आपको माधुकरी करना है, लज्जा त्याग करके, भय त्याग करके, और आत्मसम्मान को त्याग कर, क्योंकि जब तक कोई विनम्र नहीं होता है वो भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता। मन में अहंकार है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदापुमान, व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ग्रहण करता है उसके मन में अहंकार रहता है कि हम इतने बड़े परिवार में हमारा जन्म हुआ है। ऐश्वर्य जो धनी परिवार में किसका जन्म हुआ है, जैसे इनका राज परिवार में जन्म हुआ था, तो मन में अहंकार आना स्वाभाविक है कि हम इतने बड़े राज परिवार से आए हैं। और कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो उसका भी अहंकार होता है, विद्वता का अहंकार। और कोई सुंदर है उसका भी अहंकार होता है। और सचित भी के पास ये चारों थे, उच्च कुल में जन्म, राज ऐश्वर्य, अत्यधिक सुंदर और विद्वता, क्योंकि बचपन में उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, तो विद्वता भी थी। इनमें अहंकार होना स्वाभाविक था, किंतु इन ये सब होते हुए भी वो अहंकार से मुक्त थे। इसलिए हरिदास पंडित ने कहा था कि आत्मसम्मान को त्याग करना पड़ेगा माधुकरी करने के लिए। किससे? भिक्षा मांगने जाएंगे तो पता नहीं हम जिससे मांगने जा रहे हैं वो व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। हो सकता है कि वो हमारा सम्मान भी कर सकता है, हमारा अपमान भी कर सकता है, हमें गाली दे सकता है, या मरने के लिए भी दौड़ सकता है। तो भिक्षा वृत्ति ये सम्मानजनक वृत्ति नहीं है। और इससे क्या होता है, जो भिक्षा मांगने जाते हैं उनके अहंकार समाप्त हो जाता है। कोई गाली देगा तो सहन करना पड़ेगा, जब भिक्षा मांगने गए हैं हम प्रत्युत्तर नहीं दे सकते तो हमें सहन करना पड़ता है, तो सहनशीलता का भाव रहना चाहिए, आवश्यक है माधुकरी करने के लिए या भिक्षा मांगने के लिए। और आत्मसम्मान का त्याग करना आवश्यक है और लज्जा का त्याग करना। हम लज्जा करते हैं किससे मांगने के लिए, क्यों? आत्मसम्मान के कारण। मन में अहंकार है, हम इसे क्यों मांगेंगे, तो लज्जा का त्याग करना पड़ेगा। और भय, क्योंकि कोई सुंदरी युवती कन्या है वो द्वार द्वार जाकर मांगेगी तो किसी की लोलुभ दृष्टि भी उस पर पड़ सकती है, तो इसका भय भी बना रहता है। तो हरिदास पंडित ने कहा कि भय को भी त्याग करना। तो कब हम भय को त्याग कर सकते हैं? जब हम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होते हैं। भज हरे मन सिनंद नंदन अभय चरणारविंद, भगवान के जो चरण कमल हैं वो अभय चरण कमल, जो अभय प्रदान करते हैं। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करता है वो निर्भय बन जाता है, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं कि योग क्षेम वहां है, मैं मेरे भक्त का योग और क्षेम वहन करता हूं, उनको सुरक्षा प्रदान करता हूं। अनन्य चिंतयंतो मां ये अनापरि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम भाव। तो जब अनन्य रूप से भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहा है, उनके चरणों में आश्रय ग्रहण किया है, तो भगवान उसका पूर्ण दायित्व वहन करते हैं। तो इसलिए पूर्ण निर्भरशीलता जिसका भगवान कृष्ण के चरणों पर है वो निर्भय हो सकता है। तो हरिदास पंडित ने कहा कि आत्मसम्मान का त्याग करना अर्थात विनम्र होना है, सहनशील बनना है, और लज्जा का त्याग करना है, अहंकार को त्याग करना है, लज्जा का त्याग और भय का त्याग, अर्थात कृष्ण के ऊपर निर्भर सेवा। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो हमारी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में जब भक्तगण दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा के बाद उनको भिक्षा करने के लिए भेजा जाता है, और गुरु के लिए भिक्षा करते हैं। तो भिक्षा करने का यही उद्देश्य कि उनके अहंकार को मिटाना है। ये नहीं है कि शिष्यगण कुछ भिक्षा लेकर आएंगे, गुरु को देंगे तो गुरु उसी से चलेंगे, अपना जीवन निर्वाह करेंगे, ऐसा नहीं है। ये शिष्य के अहंकार को दूर करने के लिए, शिष्य के भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भरशीलता बनाने के लिए, उसको विनम्र बनाने के लिए ये भिक्षा के लिए भेजे जाते हैं। जब कृष्ण बलराम पहली बार गए थे संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये भी राजकुमार थे कृष्ण बलराम, और रथ पर चढ़कर गए थे संदीपनी मुनि के आश्रम में, वहां जाकर पढ़ने के लिए, संदीपनी मुनि के शिष्यत्व ग्रहण करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए रथ पर चढ़ के गए थे। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि आश्रम पर जाने के लिए रथ पर जाना उचित नहीं है, तो दूर से वो रथ से उतर गए, दूर पर रथ को रखा और नीचे उतर गए। नीचे उतर करके कृष्ण बलराम गए संदीपनी मुनि के पास, और जाकर उनसे जब निवेदन करते हैं तो संदीपनी मुनि ने कहा, क्योंकि संदीपनी मुनि जानते थे कृष्ण बलराम कौन, और उनके सारी लीलाओं के बारे में भी उनको ज्ञान था, कृष्ण बलराम ने वृंदावन में क्या क्या लीलाएं की, और अभी अभी आकर कंस का वध किया है मथुरा में, और उसके पश्चात आए हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो संदीपनी मुनि को अच्छी तरह ज्ञात था कि कृष्ण बलराम कौन है, वो जानते थे कि भगवान है और उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए आया है। तो संदीपनी मुनि को तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान स्वयं उनके शिष्य वन में आए हैं, ऐसा शिष्य किसी गुरु को कैसे प्राप्त हो सकता है, कौन से गुरु को प्राप्त हो सकता है। तो संदीपनी मुनि को तो बहुत आनंदित होना चाहिए, किंतु संदीपनी मुनि ने कृष्ण बलराम से कहा कि आप तो राजकुमार हैं, राज ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं, राज सुख भोग कर रहे हैं, तो आप कैसे आश्रम जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि आश्रम में रहना, आश्रम का नियम पालन करना, ये आपके लिए संभवपर नहीं होगा, क्योंकि जो आश्रम में रहेगा आश्रम का अपना नियम होता है, तो 4 बजे उठना पड़ेगा स्नान करके मंगल आरती में आने के लिए, और बहुत सारे नीति नियमों का पालन करना पड़ता है आश्रम में रहने के लिए, भगवान की सेवा करनी पड़ती है, तो कोई राजकुमार आकर आश्रम में रह सकता है, नहीं रह सकता, क्योंकि वो भोग के प्रति आसक्त है। तो संदीपनी मुनि ने जब कहा कृष्ण बलराम से, तो कृष्ण बलराम समझ गए कि क्यों ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपके आश्रम में जो भी नियम है हम पालन करने के लिए प्रस्तुत है। तो ये तो बोल दिए, फिर उनकी परीक्षा भी होनी है, तो संदीपनी मुनि ने भी उनकी परीक्षा हुई कृष्ण बलराम की, और ये वास्तविक आश्रम का नियम पालन कर सकेंगे या नहीं, इसको जानने के लिए संदीपनी मुनि ने क्या कहा कि पहले आप लोग जाइए भिक्षा मांगिए गुरु के लिए। दीक्षा नहीं हुई है उस समय, वो शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया है, किंतु उसके पहले संदीपनी मुनि ने भेज दिया उनको, आप पहले भिक्षा मांगने जाइए, क्योंकि उसी से उनकी परीक्षा हो जाएगी कि ये कितने राज ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है या नहीं। उनके मन में अहंकार है या नहीं, लज्जा है या नहीं, और जब तक इसको व्यक्ति त्याग नहीं करता वो भिक्षा मांगने नहीं जा सकता। कभी कभी लोग भिक्षा लेते हैं और भिक्षा मांगने के लिए उनका मन नहीं करता, क्या करते हैं अपने पास जो पैसा है उसको लाके गुरु को दे देते हैं, भिक्षा मांगना नहीं पड़ेगा। किंतु भिक्षा मांगने का अर्थ केवल धन नहीं देना है, इसके पीछे एक विज्ञान है कि हम कैसे अहंकार से मुक्त होंगे, कैसे निर्भय होंगे, कैसे सहनशील बनेंगे, कैसे लज्जा को त्याग करेंगे। इसके भिक्षा मांगने के पीछे ये विज्ञान है, पैसा उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो सची देवी को जब हरिदास पंडित ने ऐसा कहा तो सची देवी तुरंत राजी हो गई और वो मलिन वस्त्र पहन करके, वो राजकुमारी थी ऐसे तो मूल्यवान वस्त्र को त्याग चुकी थी, अब मलिन वस्त्र पहन ले, मलिन वस्त्र पहन करके और कोई अलंकार तो था नहीं, पहले निकाल दिया था, और इस प्रकार मलिन वस्त्र से शरीर को आवृत करके वो भिक्षा मांगने चली गई। लज्जा त्याग करके और भय को त्याग करके भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भर से होकर वो भिक्षा मांगने गए। और उस समय वृंदावन जंगल था, वहां कोई रहता नहीं थे, कहीं दूर दूर से सब गांव थे, वहां जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांगकर आई और हरिदास पंडित को उन्होंने भिक्षा अर्पित की तो हरिदास पंडित बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने देखा कि इसमें निष्ठा है, राज ऐश्वर्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं है या भोग के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और कृष्ण के ऊपर निर्भर से होता है। तब जाकर उन्होंने सची देवी को दीक्षा प्रदान की और दीक्षा प्रदान करने के उपरांत सची देवी उनसे भगवान के संबंध में सुनती रही, उनकी सेवा करती रही। तो हरिदास पंडित की एक दूसरी शिष्या थी जिनका नाम था लक्ष्मीप्रिया, तो ये प्रतिदिन 300,000 नाम जप करती थी ये लक्ष्मीप्रिया। तो हरिदास पंडित ने आदेश दिया सची देवी को कि तुम लक्ष्मीप्रिया के साथ दोनों जाकर राधा कुंड में निवास करो और भगवान के नाम जप और गोवर्धन जी की परिक्रमा में समय व्यतीत करो। तो दोनों राधा कुंड चले गए, लक्ष्मीप्रिया और सची देवी। तो राधा कुंड में रहकर प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और नाम जप करते थे। तो इस प्रकार और वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण करते थे। तो इस प्रकार कुछ काल के पश्चात हरिदास पंडित ने सची देवी को आदेश दिया कि अब तुम्हें जगन्नाथपुरी जाना है और वो अकेली गुरुदेव के आदेश से सची देवी अकेली राधा कुंड से जगन्नाथपुरी चली गई। उस समय और जगन्नाथपुरी में जब जाकर पहुंचे तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर था वहीं पर रहने लगे। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर कोई नहीं रहते थे तो वहीं पर रहने लगे और सारंग भट्टाचार्य के जो शालिग्राम शिला वो पूजा करते थे, वो शालिग्राम शिला की पूजा करते थे और वहीं पर प्रतिदिन वो भागवत पर प्रवचन देने लगे। तो जब कुछ लोग आए उनका प्रवचन सुनने के लिए और उनको बहुत अच्छा लगा, तो ये उनका नाम चारों ओर परिव्याप्त हो गया कि ऐसे वो एक राजकुमारी जो साधु बन गई है, वैष्णवी बन गई है, वो भागवत पर प्रवचन करती है। तो बहुत सारे लोग आए सुनने के लिए उनसे भागवत पर प्रवचन। यहाँ तक कि उस समय उत्कल के राजा थे मुकुंद देव, तो मुकुंद देव के पास जब ये समाचार पहुंचा कि ऐसे कोई राजकुमारी पहले थी अब वैष्णवी बन गई है और भागवत पर प्रवचन कर रही है, तो उत्कल के राजा तो ऐसे जगन्नाथ जी के भक्त होते हैं, तो वे भी आए उनसे भागवत श्रवण करने के लिए। और भागवत श्रवण करने के उपरांत उनको बहुत अच्छा लगा उत्कल के राजा मुकुंद देव को। तो बाद में उन्होंने सोचा कि वो कुछ जमीन प्रदान करेंगे सची देवी के नाम पर, तो उन्होंने निवेदन किया सची देवी को कि आप कुछ जमीन लीजिए, किंतु सची देवी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जमीन लेकर क्या करूंगी, मैं तो यहाँ भजन करने आई हूँ, तो ये जमीन लेकर मैं क्या करूं। उन्होंने मना कर दिया। और जब राजा ने उनको बार बार कहा कुछ सेवा करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक सेवा कर सकते हैं, प्रतिदिन आप कुछ महाप्रसाद हमारे आश्रम में भेज सकते हैं, जिस महाप्रसाद दूसरे वैष्णव की सेवा होगी। तो पुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलता है, अन्न महाप्रसाद। तो राजा ने ये व्यवस्था कर दी कि प्रतिदिन मंदिर से सची देवी के मठ में ये अन्न महाप्रसाद जाएगा, वहां वैष्णव की सेवा होगी। आज भी वो सिस्टम चल रहा है। तो इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गया और फिर राजा ने उनको अनुरोध किया, फिर भी सची देवी को जमीन लेने के लिए राजी नहीं हो रही थी। तो एक बार वारुणी द्वादशी का महास्नान योग आया, तो वारुणी द्वादशी में महावारुणी स्नान होता है, लोग जाकर गंगा में स्नान करते हैं। तो जब वो स्नान योग आया तो सची देवी ने सोचा कि हम कैसे जाकर गंगा स्नान करते, मन में आया उनके मन में इस प्रकार। किंतु जब मन में इस प्रकार गंगा स्नान की बात आई तो तुरंत फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है यहाँ जगन्नाथपुरी में रहने के लिए, उन्होंने मुझे जगन्नाथपुरी में रहने के लिए भेजा है, तो हम कैसे जगन्नाथपुरी त्याग करके गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं, क्योंकि गंगा स्नान करने के लिए फिर उनको या तो बंगाल में आना होता या बिहार में आना होता, आसपास जहां गंगा बहती है, तो जगन्नाथपुरी उनको छोड़कर आना पड़ता है। तो उनके मन में जब आया कि हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया है इस प्रकार कि हम जगन्नाथपुरी में रहने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम जा नहीं सकते गंगा स्नान के लिए। तो अपने मन में जो बात आई थी उसको त्याग दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे मन में तरह तरह की बातें आती रहती है, हम यह करेंगे वो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हमारे मन में संकल्प विकल्प चलता रहता। किंतु यदि गुरु का आदेश कुछ अलग है तो हमें गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए, ना कि मन की बात को या मन में जो आया है मन के आदेश को पालन नहीं करना चाहिए। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। किंतु ज्यादातर भक्त लोग क्या करते हैं, मन में आया हम वही करेंगे, चलो गुरु और कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, गुरु के आदेश की अवमान न करते, इससे गुरु अपराध हो जाता है। और हम जब तक मन को गुरु बनाएंगे तब तक हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति नहीं कर सकते। हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए इसलिए गुरु का आदेश है जो मन पर नियंत्रण कर सकता है। हम नहीं कर सकते मन पर नियंत्रण, किंतु गुरु का आदेश कर सकता है। हमारे गुरु महाराज का हमारे प्रति क्या आदेश है उसको पहले सोचना चाहिए और उसको ही पालन करना चाहिए, ना कि मन में जो बात आई उसको पालन करना चाहिए। तो सच्चे देवी के मन में ये बात आई कि हम जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, किंतु तुरंत उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया है जगन्नाथपुरी में रहने के लिए, यही भजन करने के लिए, इसलिए हम गुरु के आदेश की अवमानना नहीं कर सकते, जगन्नाथपुरी त्याग करके गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते। जब इस प्रकार उन्होंने निश्चय किया तो उसी रात उन्होंने स्वप्न देखा। ये देखिए, भक्त जब गुरु कृष्ण के आदेश का पालन करता है और उसके मन में यदि कुछ बात आ भी जाती है, भगवान उसको पूरा कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। भगवान वंशा कल्प जरूर भक्त की इच्छा को वो पूर्ण कर सकते हैं। तो उसी रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि जगन्नाथ जी स्वयं आकर सची देवी से स्वप्न में बोल रहे हैं कि तुम गंगा स्नान करना चाहती थी तो तुम्हें अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं, यहां श्वेत गंगा है, पुरी में एक श्वेत गंगा है, एक तालाब है जिसको श्वेत गंगा कहा जाता है, क्योंकि साल में एक बार उसका पानी सफेद हो जाता है, दूध निकलता है पानी से, इसलिए उसको श्वेत गंगा कहते हैं। तो एक बार जगन्नाथ ने स्वप्न में कहा सची देवी से कि तुम इस श्वेत गंगा में महावारुणी स्नान योग जिस समय है तुम जाकर श्वेत गंगा में स्नान करो, क्योंकि सारंग भट्टाचार्य का जो घर है ये श्वेत गंगा के पास ही, तो सची देवी वहां रहती थी। तो जगन्नाथ ने कहा कि तुम श्वेत गंगा में वही स्नान करो, गंगा देवी वहां आएगी, महावारुणी स्नान योग में गंगा देवी वहां आएगी, तुम वही उस श्वेत गंगा में स्नान करो। तो जब जगन्नाथ जी का ऐसा आदेश हुआ तो ये बहुत प्रसन्न हो गई सची देवी, क्योंकि वो चाहती थी महावारुणी स्नान में गंगा में स्नान करने के लिए। अब जगन्नाथ जी का आदेश आ गया कि गंगा देवी स्वयं आएगी श्वेत गंगा में प्रकट होगी और उनका स्नान हो जाएगा गंगा स्नान। तो बहुत प्रसन्न होकर आधी रात को महावारुणी स्नान के समय जाकर जब श्वेत गंगा में स्नान किया तो उसी समय गंगा देवी वहां प्रकट हो गई। और गंगा देवी प्रकट होकर इतना बड़ा स्रोत आया गंगा का, आप लोग जानते हैं गंगा में कि तेजी से स्रोत बहता, तो इतना बड़ा तेजी से स्रोत आया और सची देवी उसमें डूब गई। और उन्होंने देखा कि वहां से जाकर वो रात में जगन्नाथ जी का जो सिंहासन है, सिंहासन के सामने जो जगमोहन है वो वहां पर देख रही है कि वहां गंगा में बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं और वो भी स्नान कर रही है। बहुत कोलाहल मचा हुआ जब लोग स्नान करते हैं एक साथ किसी स्नान योग पर, जैसे इलाहाबाद में आप जाते हैं कुंभ मेला में या किसी हरिद्वार में, तो लोग स्नान करते रहते हैं और कोलाहल मचा रहता है। तो सची देवी ने देखा कि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं और वो भी स्नान कर रही है। तो इधर उस समय जगन्नाथ जी का दरवाजा बंद था, मंदिर का दरवाजा बंद था, ये भीतर ऐसा हो रहा और जो कोलाहल सुनाई पड़ रहा था भीतर वो बाहर सुनाई पड़ा। जब तो जो द्वारपाल थे उन लोगों ने सुना कि मंदिर के भीतर से बहुत सारा कुछ शोर शराबा शब्द आ रहा है, कोलाहल का शब्द आ रहा है। तो ये लोग आश्चर्य हो गए कि मंदिर के भीतर से ऐसा शब्द कहाँ से आएगा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर जब बंद होता है पहले सर्च किया जाता है चारों ओर, कोई रह नहीं गया, छिप करके कोई रह जाएगा अंदर। तो पहले ये जो द्वारपाल होते हैं पहले खोजते रहते हैं कोई है या नहीं, सभी को निकालने के बाद मंदिर बंद होता है। और मंदिर जब बंद होता है उसको मंदिर का जो लॉक है उसको सील किया जाता है, कोई खोल नहीं सकता ऐसा हैकर। और उसकी चाबी दो तीन लोगों के पास रहती, तीनों लोग आएंगे एक साथ मिलेंगे तब जाके चाबी खोलेगा, नहीं तो खोल नहीं सकता। तो जब ये द्वारपाल लोग सुनने लगे कि कुछ शब्द आ रहा है मंदिर के भीतर से, वो आश्चर्य हो गए और ये लोग तो द्वार खोल नहीं सकते, तो सीधे गए राजा के पास। उसी रात में जाकर राजा को सूचना दी कि ऐसे ऐसे मंदिर के भीतर से बहुत बड़ा शब्द आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग मंदिर के भीतर हैं, तो ऐसा शब्द आ रहा है। तो राजा आश्चर्य होकर तुरंत आए और आदेश दिया मंदिर खोलने के लिए। तो जब मंदिर खोला गया देखा गया कि मंदिर के भीतर कुछ नहीं है और ये सची देवी खड़ी अकेले। तो राजा ने जो देखा कि ये सची देवी अकेली मंदिर के भीतर खड़ी है और मंदिर बाहर से बंद है, तो सभी ने सोचा कि ये अकेली मंदिर के भीतर कैसे है, क्योंकि मंदिर तो पहले देख करके बंद किया गया था, बंद होने के बाद मंदिर के भीतर कोई आ नहीं सकता। तो उन लोगों ने सोचा कि ये शायद कहीं छिप करके रह गई होगी मंदिर बंद होने से पहले। और जगन्नाथ जी का बहुत सारा सोने का और चांदी के बहुत सारे अलंकार रहते हैं, जगन्नाथ जी का जो भंडार घर है वो मंदिर के बगल में भीतर ही है। तो जगन्नाथ जी के जो प्रतिदिन जो जगन्नाथ जी अलंकार पहनते हैं वो भंडार घर से आता है और वहीं फिर रख दिया जाता है। ये एक बाहरी भंडार घर है और एक भीतरी भंडार घर है जिसको रत्न भंडार बोलते हैं, उसको खोला नहीं जाता है। वो कई सालों के बाद बीच बीच में चेक करने के लिए कभी कभी खोलते हैं। तो राजा ने और दूसरे लोगों ने सोचा कि ये सची देवी शायद कहीं रह गई होगी और ये जगन्नाथ जी का जो अलंकार है चोरी करने के लिए आई होगी। इस प्रकार सोच करके उनको बंदी बना लिया गया सची देवी और जेल में डाल दिया। जब राजा ने जेल में डाल दिया सची देवी को, सची देवी किंतु दुखी नहीं थी, वो तो बहुत आनंद अनुभव कर रही थी और जप कर रही थी, भगवान का नाम जप कर रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ऐसा हुआ तो फिर राजा, फिर रात थी तो वो सोने चले गए, तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए राजा के। राजा को स्वप्न में जगन्नाथ जी ने डांटा राजा को, कि तुम क्या सोच रहा है कि हमारा जो भक्त है वो आए थे मंदिर के अंदर, हमारे चरणों से हमने गंगा को निकाला था और वो गंगा में स्नान करने आई थी, और तुम उसको चोर समझ करके जेल में डाल दिया है, तो तुरंत उसको मुक्त करो अभी जेल से, और तुम और जितने भी पंडे लोग हैं सभी जाकर उसके चरणों में क्षमा प्रार्थना करो। तो जब जगन्नाथ जी ने ऐसा आदेश दिया राजा को स्वप्न में, राजा तुरंत उठ करके डरते हुए सभी पंडे लोगों को बुला के, क्योंकि सभी लोग एक साथ बोल रहे थे कि इसने चोरी करने के लिए वो आई थी, तो सभी जाकर वो सचिदेवी के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा प्रार्थना की, उनको जेल से मुक्त किया और उनके आश्रम में ले गए, और राजा ने उनसे दीक्षा लेने के लिए इच्छा व्यक्त की। तो सची देवी ने राजा को बाद में फिर दीक्षा प्रदान की, और जो पंडे लोग थे उन लोगों ने भी सची माता से, सची देवी से दीक्षा ली। और इस घटना के पश्चात उनका नाम सची देवी से गंगा माता गोस्वामी के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। क्योंकि स्वयं गंगा देवी आई थी वहां जगन्नाथ के चरणों से, वहां प्रकट हुई थी उनके स्नान के लिए, और गंगा के स्रोत में वो चले गए थे जगन्नाथ के मंदिर में। तो इसका अर्थ है कि जगन्नाथ जी के चरण और जो श्वेत गंगा है उसमें इंटर कनेक्शन है। तो जगन्नाथ के चरणों से ये गंगा आकर वहीं प्रकट होती है श्वेत गंगा के रूप। तो भी जो भी हो, ये बहुत लंबी कथा है, हम बलदेव विद्या भूषण के बारे में अब बोले नहीं है कुछ। जय गंगा माता का स्वामी की जय। तो बलदेव विद्या भूषण के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि समय अधिक हो चुका है। तो श्री बलदेव विद्या भूषण, इनका जन्म उड़ीसा में रमुना के पास ही हुआ था, और ये बचपन से भगवान के भक्त थे और परम विद्वान थे। उन्होंने व्याकरण, न्याय, साहित्य, तर्कशास्त्र, इसमें उन्होंने दक्षता प्राप्त की थी, और इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे हैं, किंतु किसी भी ग्रंथ में अपने घर परिवार या जन्मस्थान इसके संबंध में कोई वर्णन नहीं किया है। वस्तुतः जो साधु होते हैं वो लोग नहीं बताते हैं उनका, उनका जन्म हुआ था, उनके परिवार, इसके संबंध में वो लोग नहीं बताते हैं। क्या इसके बारे में नहीं सोचते हैं, केवल कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, उसको भूल जाते हैं जो पिछला जीवन है। आजकल कोई साधु बनेगा तो पहले लोग पूछेंगे आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ है, क्या करते थे, पूरा साधु को याद दिला देते हैं अपना पूर्व जीवन। तो साधु आया है घर छोड़कर भूलने के लिए, घर परिवार को और कृष्ण का स्मरण करने के लिए, किंतु लोग होते हैं उसको पूरा याद दिलाते। तो बलदेव विद्याभूषण, इसलिए उन्होंने कहीं वर्णन नहीं किया अपने बारे में, और ये बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान के भक्त भी थे, और अल्प आयु में वो गृह त्याग करके चले गए थे। तो जाकर जो माध्वाचार्य संप्रदाय होता है, हम लोग जिस माध्व गौड़िया संप्रदाय में आते हैं, माध्वाचार्य संप्रदाय आजकल उसको तत्ववादी संप्रदाय भी कहते हैं, तो ये बलदेव विद्याभूषण उन तत्ववादियों के साथ रहकर इस तत्ववादी दर्शन से प्रभावित और प्रभावित होकर इस तत्ववादी दर्शन का प्रचार कर रहे थे। सारे भारत में भ्रमण करते हुए वो प्रचार कर रहे थे। जब वो उड़ीसा में आए कुछ काल के बाद, तो उस समय श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे रसिकानंद प्रभु, जो उड़ीसा में प्रचार कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे थे। श्यामानंद प्रभु भी कुछ काल के लिए प्रचार किया था, उसके पश्चात रसिकानंद प्रभु ने भी प्रचार किया। और ये रसिकानंद प्रभु ये अनिरुद्ध के अवतार थे, जो चतुर्वेद होते हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये रसिकानंद प्रभु अनिरुद्ध के अवतार है। तो रेमुणा में जब वो निवास करते थे, रसिकानंद प्रभु अभी भी उनकी उनका भजन कुटीर वहां पर है रेमुणा में, गोपीनाथ मंदिर खिरचोरा गोपीनाथ मंदिर के पास। तो रसिकानंद प्रभु का जब तिरोधान हुआ, वो गोपीनाथ के मंदिर के भीतर गए और लौटकर नहीं आए, अंतर्ध्यान हो गए, गोपीनाथ के शरीर में लीन हो गए। किंतु उनका भजन कुटीर है, उनका जो उनकी साया और पादुका अभी भी रखा हुआ वहां पर। तो रसिकानंद प्रभु के एक शिष्य थे दामोदर देव गोस्वामी। तो बलदेव विद्याभूषण आकर उनसे मिले, उनसे मिलने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत भेदावे तत्व के संबंध में उन्होंने सुना, तो वो बहुत प्रभावित हुए उससे। तो दामोदर गोस्वामी के सान्निध्य में रहकर उन्होंने वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया बलदेव विद्याभूषण, और कुछ काल वहां रहने के पश्चात वो वृंदावन चले आए। दामोदर देव गोस्वामी की अनुमति से वृंदावन चले आए, और उस समय वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव के आचार्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय गौड़ीय वैष्णव के आचार्य थे। तो उनके पास रहकर 60 संदर्भों का अध्ययन किया। तो उसी समय जयपुर के राजा जो गौड़ीय वैष्णव धर्म से दीक्षित थे, तो उनके पास कुछ रामानंद संप्रदाय के लोग पहुंचे थे, जिन लोगों ने कहा कि ये जो गौड़ीय संप्रदाय ये प्रामाणिक संप्रदाय नहीं, क्योंकि जयपुर के राजा गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण कर चुके थे और गोविंद जी की पूजा करते थे गौड़ीय वैष्णव को लेकर, और रामानंद संप्रदाय के लोग चाहते थे गोविंद जी की पूजा करने के लिए। इसलिए उन लोगों ने कहा जयपुर के राजा से कि ये गौड़ीय वैष्णव लोग ये प्रामाणिक वैष्णव नहीं है, और इनका क्यों प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि इनका वेदांत सूत्र के ऊपर कोई भाष्य नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्र का जो प्रामाणिक और स्वाभाविक भाष्य श्रीमद् भागवतम को मानते थे, इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने कोई वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं लिखा था, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्र का भाष्य है। किंतु रामानंद लोग इसको नहीं मानते थे, तो उन्होंने कहा जयपुर के राजा से कि ये लोग प्रामाणिक नहीं है, इनका वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं। तो जयपुर के राजा ने एक चिट्ठी लिखी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास कि ऐसे ऐसे रामायण संप्रदाय के लोग कह रहे हैं, यदि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य है तो आप उसको हमारे पास भेजिए। तो ये जब कहकर भेजा तो उस समय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उनका जयपुर आना उनके लिए संभव नहीं था। तो उन्होंने भेजा बलदेव विद्याभूषण को, जो उनके पास अध्ययन कर रहे थे षट् संदर्भ आदि ग्रंथ, तो बलदेव विद्याभूषण को भेजा। तो बलदेव विद्याभूषण आए जयपुर और रामानंद संप्रदाय के वैष्णवों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने प्रमाणित किया कि ये वेदांत सूत्र का जो स्वाभाविक भाष्य है, प्रामाणिक भाष्य, वो श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि श्री व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखा है और व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम भी लिखा, और व्यासदेव मानते हैं कि भागवत वेदांत सूत्र का भाष्य, किंतु ये लोग नहीं माने। उन लोगों ने कहा कि हमें भाष्य दिखाइए, आपके गौड़ीय संप्रदाय का भाष्य कहाँ है, आप हमें दिखाइए, तब जाकर हम मानेंगे, ये सब हम आपकी कथा नहीं मानेंगे। या तो वो बहुत चिंतित हो गए बलदेव विद्याभूषण। उन्होंने जाकर गोविंद देव जी से प्रार्थना की कि आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय खतरे में, क्योंकि इनका वेदांत सूत्र का कोई भाष्य नहीं। तो उन्होंने प्रार्थना की गोविंद देव जी से कि आप गौड़ीय संप्रदाय की मर्यादा की रक्षा कीजिए, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। तो उसी रात गोविंद जी ने स्वप्न में बताया बलदेव विद्याभूषण को कि तुम वेदांत सूत्र पर भाष्य रचना करो और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बता देंगे, हम बताएंगे और तुम लिखना, तुम चिंता मत करो। तो जब गोविंद ने ऐसा कहा कि हम बताएंगे और तुम लिखना, तो वो बहुत आश्वस्त हुए। तो फिर वो गलता में जाकर एकांत स्थान में बैठकर उन्होंने भाष्य की रचना की और गोविंद जी बताते थे, वो लिखते थे और अल्प समय में भाष्य संपूर्ण हो गया। और इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है भाष्य के अंत में कि ये भाष्य हमने लिखा नहीं, स्वयं गोविंद देव ने लिखा है, हम तो लेखक हैं, वो स्वयं उन्होंने बताया, इसलिए उसका नाम पड़ा गोविंद भाष्य। और जब उसके पश्चात उन्होंने रामानंद वैष्णव को ये भाष्य दिखाया तो ये लोग पढ़ करके स्वयं गोविंद देव जी ने लिखा ये भाष्य, तो वो सब चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए, कोई तर्क नहीं कर पाए। तब जाकर उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये प्रामाणिक संप्रदाय है। तब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की मर्यादा की रक्षा हो गई, ये बलदेव विद्याभूषण की कृपा से और गोविंद जी की कृपा से, क्योंकि गोविंद जी स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु गोविंद जी में कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार बलदेव विद्याभूषण ने हमारे गौड़ीय संप्रदाय की मर्यादा की रक्षा की थी इस गोविंद भाष्य प्रणयन के द्वारा। तो जो भी हो, आज हम श्री बलदेव विद्याभूषण के चरणों में और श्रीमती गंगा माता गोस्वामी के चरणों में अपने प्रणति निवेदन करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करते हैं कि हम पर कृपा करें, हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसको दूर करें और हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति स्थापित करें। हरे कृष्ण। जय श्री बलदेव दर्शन प्रभु की जय। जय श्री गंगा माता गोस्वामी की जय। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय समवेत भक्त वृंद की जय। जय निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि।